नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील। सरकार ने तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली और फरीदाबाद से जोड़ने वाली नई सड़क परियोजना को भी मंजूरी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कमी नहीं, तेल कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। और बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू, भारतीय खिलाड़ी कल से अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस जल जीवन मिशन का 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज बनी है, विलेज की कमेटी, ग्राम सभा की कमेटी, पंचायत की कमेटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, फिर जहां पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां पे नए सोर्सेज निकालना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना।
जल जीवन मिशन के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल ने इसके कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8,69,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3,59,000 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा सुजलम भारत स्थापित करने को भी मंजूरी दी। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव आईडी आवंटित की जाएगी। इससे स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का फैसला किया है।
मदुरई सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है। लोकेशन अगर हम देखें मदुरई की, तो आसपास बड़े शहरों के साथ इसका मदुरई एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी लगातार है। ऑलरेडी एक कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट है, लेकिन लोगों का एस्पिरेशन है कि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 3,630,77,00,000 रुपये मंजूर किए हैं। करीब 31.5 किलोमीटर लंबा ये गलियारा दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधे और तीव्र गति का संपर्क जरिया बनेगा।
जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी। इस कनेक्टिविटी को आप स्टडी करें अगर, तो एक तो यमुना एक्सप्रेसवे के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो गई, दूसरा जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है इसके साथ कनेक्टिविटी, और दिल्ली के एरियाज के साथ इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी।
आर्थिक मामलों की समिति ने NH-752D के बदनवार, पेटलावाद, थंदला, तिमरवानी खंड से लगभग 80 किलोमीटर लंबे 4-लेन कॉरिडोर के विकास को भी मंजूरी दी। कैबिनेट समिति ने सेंथिया पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी खड़गपुर चौथी लाइन के निर्माण की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने आज भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश संबंधी दिशा निर्देशों में बदलाव को मंजूरी दी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI नीति में संशोधन का उद्देश्य स्टार्टअप और डीप टेक कंपनियों के लिए वैश्विक निवेश निधियों से अधिक FDI प्रवाह को बढ़ावा देना और व्यापार करने में सुगमता को आगे बढ़ाना है। सरकार ने आज FDI नीति में उन बदलावों को मंजूरी दे दी जिनमें PN3 के अंतर्गत अनुमोदन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। सरकार देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है। एक रिपोर्ट।
वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100% CNG और PNG की आपूर्ति सुनिश्चित की है। वहीं अन्य उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक का लगभग 70-80% गैस उपलब्ध कराई जा रही है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए LPG सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल तय किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि अन्य गैर घरेलू क्षेत्रों जैसे रेस्तरा, होटल और अन्य उद्योगों के लिए LPG आपूर्ति से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों के 3 कार्यकारी निदेशकों की एक समिति भी बनाई गई है। आजू के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि LPG उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक जगहों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ऑयल कंपनियों ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी। ऐसे अनुरोधों को उनकी योग्यता, आवश्यकता और LPG की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोपहर 12 बजे के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने यह प्रस्ताव पेश किया। श्री जावेद ने कहा कि श्री बिरला सदन में सभी सांसदों का विश्वास बनाए रखने में विफल रहे।
I ask for leave of the House to move the following resolution.
मैं प्रस्ताव पेश करने की सदन से अनुमति चाहता हूं। सदन के अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया और विपक्षी महिला सांसदों पर निराधार आरोप लगाए। सदन अध्यक्ष ने सार्वजनिक सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया। ये दिखाता है कि सांसदों को विश्वास बनाए रखने के लिए अध्यक्ष निष्पक्ष रवैया अपनाने में विफल रहे।
चर्चा में भाग लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से ही रहे हैं।
एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए का खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार का बिजनेस का खिलाफ काम करते हैं और विपक्ष जो रेजुलेशन आते हैं उसको समर्थन करते हैं, आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए। कल के माध्यम से स्पीकर का नॉमिनेशन जरूर हुए हैं लेकिन आप कहते हैं कि स्पीकर सरकारी भाषा बोलते हैं। आप इस तरह का जब इल्जाम लगाते हैं स्पीकर के बारे में, आप सोच के देखना चाहिए। हमारा तो कितना स्पीकर हुए हैं, ज्यादातर स्पीकर आपके ही पार्टी से रहे हैं।
श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले महीने बजट सत्र की शुरुआत के अवसर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि उन्हें बोलने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सभी सांसद बराबर हैं और सदन में बोलने के लिए अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य ने कभी भी कागज फाड़कर अध्यक्ष पर नहीं फेंके हैं और न ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने के लिए अध्यक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय सदन में विपक्ष के नेता को अध्यक्ष ने बार बार टोका। वहीं समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने कहा कि सरकार ने अध्यक्ष के पद को कमजोर किया है, उपाध्यक्ष पद के लिए कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में विपक्षी सांसदों को सबसे अधिक संख्या में निलंबित किया गया। DMK सांसद TR बालू ने भी तृणमूल सांसद का समर्थन किया। शिवसेना UBT गुट के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने विपक्षी सदस्यों के माइक बंद करने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अध्यक्ष के पद को कमजोर किया है। दूसरी ओर TDP के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने अध्यक्ष ओम बिरला की प्रशंसा की और कहा कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने संसद का बहुत ही बेहतरीन संचालन किया। लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी विधेयक ने ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि किसान महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उन्हें हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। बाद में सदन ने विशेष उल्लेखों पर चर्चा की। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से दो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें से एक यात्री रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से रवाना होगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि नई रेल सेवाओं से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के यात्रियों को लाभ होगा। मंत्रालय ने बताया कि पोदानूर धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस कोयम्बटूर के औद्योगिक क्षेत्र को पूर्वी भारत के कोयला और खनिज उत्पादक क्षेत्र झारखंड से सीधे जोड़ेगी। नागरकोइल चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस तेलंगाना के लिए इस क्षेत्र की पहली सीधी अमृत भारत सेवा है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 20 अधिक जिलों से होकर गुजरेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को डराने धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता में उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का उद्देश्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो पूरी तरह से त्रुटि रहित हो।
बारह राज्यों में लगभग 60 करोड़ मतदाताओं के रिविजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जिसका एक मात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी पात्र मतदाता छूटे ना, लेकिन उसके साथ साथ कोई भी इनएलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग को राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में न्यायिक अधिकारियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। प्रसार भारती का ऑडियो विजुअल प्रसारण और प्रसार मंच बीबी शब्द अगले वर्ष मार्च तक लोगो रहित समाचार सामग्री प्रतिदिन निशुल्क उपलब्ध कराता रहेगा। मंत्रालय ने बताया है कि पीबी शब्द के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सामग्री लोगो रहित है और इसका उपयोग करते समय पीबी शब्द का उल्लेख करना जरूरी नहीं है। स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला हो लिंग फांग और झेंग यू चिए से होगा। किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में कल हांगकांग के जेसन गुनावन से पहला मैच खेलेंगे। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही हैं। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तथा हरिहरन अमसाकरुणन और MR अर्जुन भारतीय चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा और मालविका बंसोड प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और ऋत्विका गड्डे भारतीय चुनौती पेश करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील। सरकार ने तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली और फरीदाबाद से जोड़ने वाली नई सड़क परियोजना को भी मंजूरी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कमी नहीं, तेल कंपनियों ने LPG उत्पादन बढ़ाया। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। और बाजल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू, भारतीय खिलाड़ी कल से अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।